Why they are doing pranam? Why they are doing pranam?
Because they worship
her. Why they worship?
Because she is Krishna's dear master.
They want anything?
No.
Nothing.
Just devotional service.
Nothing.
Nothing material.
Asani. Must they have greed anything?
They have greed for not in a specific way. They have not yet realized rasa.
Their idea is not completed. Rupa Goswami is doing this prayer. Or Raghunath Das Goswami is doing this. And ordinary person, he is doing. The meaning is the same?
No.
So our ordinary person, general, anyone can do. No harm. Ordinary. Like we do pranam to Krishna. We also do Jagannath. No? Why we do to Jagannath? And why to Krishna? What are the ideas behind? Jagannath is of Dwarka. No? But Chaitanya Mahaprabhu sees that actually there is no difference of tattva. Only there is difference of rational ego. We cannot have the same thing which we have from Radha and Krishna, from Jagannath. There is Draupadi, Subhadraji and Baldev also with Krishna. So we cannot ask for anything to Radha and Krishna there. In front of Subhadra and Baldev. Baldev is elder brother of Krishna. But when we do pranam to Srimati Radhika here. It is a general pranam mantra. They don't know what is Srimati Radhika and what we want from Radhika. What class of devotion we want, we actually don't. We have no grace. We are doing Vaidhi Bhakti. As a Narayan Sarup Vivaji. But when gradually we will have an association of Rasi Vaishnava, and then we know the speciality of Srimati Radhika, what is Radhika, then we can do this pranam so well. For general mass, there is no difference aap kaun se mantra bol rahe the, wo Bhagavat wala pranam? Jab Brahma Rudra Marutai Divya Tavai Vedaya Sangha Patra Karmopanishadai Gayanti Jagan Samadha Dhyana Vasti Tadgatena Manasa Pasyanti Yoginam Yasyantam Na Vidu Surasuragan Devaya Dasman. They will see that same person. One sloka is there also. Santakaram Bhujagasainam Patmanabham Suresam. This is. They will tell that this pranam is mantra is so good than that Radha pranam. There are so many persons. And they actually say like this. But when we had heard from our master spiritual who is Sri Radhika, in what way we want to have the devotional service of Sri Radhika. What is the importance? Especially to, then we can do it. It is said that Krishna Bhakti Vinod Thakur Kirtan. Ebara Karuna Kara Lalita Abhisara, not Radhika. Prabhupada Das Goswami Prem to Srimati Radhika. At first he has done pranam to his Gurudev, Rupa Goswami. Sirup Manjari Pakita Puresmin Tumsa Parashri Padam. As a Sakhi Bhav. And he had told him, I am doing all the pranam, giving Kusmanjali in the Radhika's name, through you.
Okay.
Not the way. This is the way. Krishna Das Kaviraj Goswami is doing. He has all to do. Only we repeat it, that one day we will be able to do this prarthana that Srimati Radhika. Now we are uttering this. It is of Krishna Das Kaviraj Goswami in Govinda Lilam. We are not able to remember all these lila of past times of Krishna Das Gopiraj Goswami written in Govinda Lila. It is not for us now. When we will be able to qualify for this, then we can do. Radhika is so much far away from us. But we want to do, we utter all these slokas.
If we keep on uttering these shlokas with very menial feeling, Kater Bhav, then we'll get this liquid. Of course, we don't understand and we don't have that feeling right now.
Gradually, you know.
Yes, but the only the main portion which is before us, yes. We should keep on praying like this
for certainly.
Forbidden to pray.
We should pray. And we should utter all these slokas. There is a sloka. Bhajami Radham Arvindanistam. Smarami Radham Madhurasmitabhyam. Vadami Radham Karuna Bharatyam. Tato Maman Nasti Gatit Nakat. Radha ji ke bina humari koi gati nahi hai. Actually it is so. Radha ji ke bina gati humari nahi hai. ये है एक्चुअली समझ रही है मेरी गांव अभी तम खा रहे हैं पी रहे हैं चल रहे हैं फिर रहे हैं अभी राधा जी से संबंध क्या रखें तो कहने के लिए कह रहे हैं एक्चुअली वी आर नॉट लाइक सो विदाउट राधा आई कैनॉट लीव ए मोमेंट दिस इन दिस इज भजामि राधाम अरविंद नेत्रम आई एम भजामि I am doing bhajan to Radhika. Her lotus eyes are like lotus. Arvinda Netra. Some reddish. Some whiteness. And in whiteness there is some reddish. And by the corner, she is seeing the Krishna. Not by full eyes, only very little corner. When she sees to Krishna, the float of Krishna with his hand goes down. And this Pitambar Vastra also goes down. And Krishna at once begins. Trembling and he is about to fall on earth. Only by a very, very little part of eyes is. So I am doing Vandana to Srimati Radhika. then Krishna, by a part of his eye, her eyes, is being so. She becomes like so. He forgets himself. So bhajami radham aravinda netram smarami radham madhura smritabhyam. And I smarami, I am remembering Srimati Radhika. Madhura smritabhyam, smriti, you know, smriti means dhire dhire manda muskan. Smit, not oh ho ho ho. Madhura smitabhyam. Madhur. Madhur means with madhu. Honey. Like honey. You cannot give the taste of this. Always take it. Why is love? Krishna is doing like this, Srimati Radhika. And begging pardon that you should give your man. You are so little, Krishna is telling. You are so little, so Sukumari, but yet your man is so much. See, how it came in your heart? So Srimati is laughing, smiling. Madhura Smitabhyam, Badami Radham, Karuna Bharam. Yet you are so Karun. That anyone who wants that I like to be Dasi of Srimati Radhika. See, at once sent Lalita and see whether she wants or not. And if she is wanting, then at once give my Dasi to her. Bring her to my goodness. So I know that there is none without Radhika. I cannot do upasana to anyone else than even Krishna. I will be. So I want to. Bhajami Radham. Kate to hai, koi bhav aata hai. Aankh mein aansu aate hain. Hriday mein tarlata aati hai. Koi dukh hota hai. Yadi hum kasht mein pad gaye, koi dukh. पिताजी आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं, पिताजी के शरणागत हो जाते हैं, जानते हैं कि पिताजी जरूर हमारी रक्षा करेंगे, अभी लाखों रुपए की जरूरत होगी तो जहां तहां से वो दे देंगे, दूसरा देगा, तो इतना भी तो राधा जी के प्रति हमारी भावना नहीं है, तो फिर ये सब श्लोक पढ़ रहे हैं, हाँ कुछ कुछ लग जाएगा तेल जैसा, थोड़ा सा चिकनाहट तो आई जाएगा, तो इसीलिए ये सब बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा किए गए वंदन है, तो अभी हमारे लिए लाभ इसलिए करते हैं।
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुते प्रणमामि हरि प्रिये हा देवि काकुहरगतुयाद्रवाच जाचेनिपत्रभोगि दण्डवतोद्भटार्ति आस्या प्रसादमभूतस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणे गणन अङ्गश्यामलिं छटाविरवितु मन्दे कृतेन्दे वरम् जड्डञ्जागुडरुचि साङ्विदतङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारण्यनिवासिनं मिदिलषद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन्दाम् भक्त्याविहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वैराग्य जुग भक्ति रसन प्रयत्ने अपायन मामनु भिक्षु मन्न कृपाम्बुदिरिजा पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभु माश्रया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप पदा मदीयं ददाति सपदा वैराग्य जुग भक्ति रसन प्रयत्ने अपायन मानन भेक्षुमंदन कृपाम्बुदिरिजा पर दुख दुखी सनातनस्थम प्रभुमाश्रया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया कर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमां भजामि राधामरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताभ्यां वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्निपातम् क्या प्रसंग बोले, बहुत दिन हो गया।
ये तो भागवत अमृत का वाक्य से कुछ
कल से बृहद भागवत अमृत का पाठ आरंभ करेंगे और ये आज हम लोग कुछ चैतन्य चैतामृत से हम लोग दिल्ली में कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी के संबंध में विचार कर रहे थे। उसमें रघुनाथ दास जी के जीवन चरित्र पर हमने थोड़ा सा वहाँ पर प्रवचन किया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी वैसे तो कृष्ण लीला के और महाप्रभु के लीला के नित्य परिकर हैं, किंतु इस लीला में, महाप्रभु जी के लीला में साधक उचित, उन्होंने साधन भजन करके भाव अवस्था या प्रेमावस्था तक गए हैं ऐसा दिख रहा है। यदि किसी साधक को भजन करना है सचमुच में और बहुत जल्दी एक ही दो जन्म में पाना है भगवान को, देरी नहीं विलंब नहीं, तो उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा भजन करने पड़े। किंतु ऐसा भजन करना बड़ा कठिन भी है। वैसा भजन यदि हम करना आरम्भ कर दे तो दो दिन में बीमार भी पड़ जाए, बड़ा कठिन है। उन्होंने जैसे संसार के प्रति आसक्ति को छोड़ा और कठोर भजन किया बिना खाए पिए, अंत में दिन रात रोते रहते थे, वो तो बड़ा भारी कठिन है। किंतु जो चाहते हैं उनके लिए कठिन नहीं है। ये संसार कुछ उस जगत की छाया है, कुछ विषयों में दोनों में सिमिलरिटी है, कुछ कुछ सादृश्य है उस जगत में इस जगत में। ये जगत भोग के लिए नहीं बल्कि शिक्षा का स्थल यदि लिया जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। किंतु शिक्षा लेगा वही व्यक्ति जो सद्गुरु पद आश्रय किया है, कुछ समझता है इस जगत को, वो शिक्षा लेगा। सभी लोग ले लेंगे। दत्तात्रेय जी ने कुछ कुछ समझा इस जगत को, जो ये शिक्षा का स्थान है, और तब इसमें से ही उन्होंने 24 गुरु कर लिए। हम तो समझते हैं कि 24 गुरु का नाम उल्लेख किया गया है, वो जगत के सारे जगत को ही अपना गुरु मानते थे। 24 तो कह दिया गया, किंतु ऐसी कोई चीज नहीं जिसको वो देखते और उससे गुरु मान करके कुछ न कुछ सीख। जगत में कुछ ऐसा है ही नहीं जो शिक्षा न हो दिया जा सके। बुद्धिमान पुरुष वही है कि जगत की सब वस्तुओं से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करे। अभी किसी ने पूछा, जगत ये संसार का कारागार है, संसार कारागार है, बहुत ही दुखपूर्ण है संसार। संसार में एकदम इसे दूर रखो। किंतु श्रीमद् भागवत में एक ये श्लोक है, तावत रागादय तेना कारागृहा गृहम देहम
तावत मोह अंगनिगड़म जावत कृष्ण अध्ययना।
ये संसार आसक्ति यदि उसमें कर लिया जाए, मोह यदि हो जाए, तो वो हथकड़ी और बेड़ी है। और जिसका मोह नहीं है वो क्या करेगा, वो कैसा रहेगा? जिसका मोह नहीं उसके लिए ये कारागार नहीं है, ये संसार। और जब तक ये मेरा है तब तक ये चोरी इत्यादि हम कर रहे हैं। वो पहला का तावत रागादय तेना, राग माने क्या, आसक्ति संसार के प्रति, वही चोर है जो आसक्ति संसार के प्रति करते हैं। और यदि संसार के प्रति आसक्ति दूर हो गई तो ये बंधन का कारण नहीं रहेगा, ये मुक्ति का कारण बन जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको कहा, हमारे रघुनाथ दास को, घरे जाओ ना हो बातू, कमे कमे पाए लोग भव सिंधु। आज अभी लौट जाओ घर में रहो, अभी बातुल पागलपन मत करो। संसार छोड़ने से ही यदि भगवान मिल जाएंगे तो बहुत से लोग संसार छोड़ देते हैं, दारिद्र के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे कारणों से छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, घर से बिगड़ करके बनी नहीं छोड़ देते हैं, दूसरी जगह चले गए, तो फिर भगवान मिल जाएंगे। इसलिए संसार छोड़ने से ही भगवान नहीं है। विशेष करके अपक्व अवस्था में यदि संसार छोड़ें तो वो ऐसे ही दुर्दशा होती है। जैसे कि कुछ दिन पहले कोई एक लड़का आया मठ में, पढ़ रहा था घर में, छोड़ करके चला आया। हम लोगों ने कहा जो तुम चले जाओ, तो वो माना नहीं, नहीं हम तो रहेंगे। अच्छा ठीक है। अब वो घर पर चिट्ठी देता है और लोगों को चिट्ठी देता है, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा मन ही नहीं लगता, सब समय घर की याद आती। अब कुछ घर में जाकर के कुछ पढ़ लिख लूं तो फिर पीछे मठ में आऊंगा, बहुत ठंड लग रही है। कितने तरह की ये सवाल, कुछ दिन के बाद वो चला जाए। इसलिए घर छोड़ने से नहीं, आसक्ति यदि छोड़ करके भगवान का भजन करने का ये हो, जो सचमुच में हम भगवान का भजन करेंगे तब तो होगा, रघुनाथ जैसा अपने आप त्याग आ जाए। वैसी सभी स्थितियां नहीं होने से हम लोग जो छोड़ लेते हैं, कभी कभी वो सब गंदी आदतें हम लोगों में आ जाती, जो कि संसारिक लोगों में भी नहीं है। इसलिए घर में जाओ स्थिर हो या घर जाओ ना हो बातें घर में जाओ। संसार या कोई चीज बुरी नहीं है, उसका सदुपयोग एवं दुरुपयोग ही बुरा और अच्छा है। इसलिए महाप्रभु जी ने उनको शिक्षा दी, घर में जाओ, अपने व्यवहार ऊपर से सब ठीक रखो और भीतर में क्या है स्त्री है जाकर ना हो बाकी अंतरे करण निष्ठा बाहर लोक व्यवहार अचिराते कृष्ण तुम्हार करी देने अंतर में निष्ठा रखो। निष्ठा रखना की सहज है, निष्ठा किसको कहते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि का नाम निष्ठा है। गुरु वैष्णव शास्त्र जो कुछ कहते हैं वो सब एकदम सही है, वो सब ठीक है, उसमें दृढ़ विश्वास अर्थात दृढ़ श्रद्धा रहे, उस विश्वास हो जाए ये ठीक है, तो इसी का नाम ये श्रद्धा आगे जाकर के निष्ठा का रूप लेती है। निष्ठा माने निश्चलात्मक बुद्धि, जो कुछ अगर प्राण चलाया जाएगा भगवत भजन नहीं छोड़ेंगे, चाहे घर में रहेंगे चाहे बाहर रहेंगे कहीं भी रहेंगे भजन करेंगे, ऐसी बुद्धि निष्ठा उसमें। इस निष्ठा को लेकर के घर में कोई रहे और भजन कर रहे करे वहां पर एक असुविधा केवल हो सकती है, ऐसा कोई संग नहीं मिले, किंतु जहां पर ऐसा वैष्णव संग मिले तो वो संसार ही अच्छा है। अनाशक्त रह करके वैष्णव के संग में जहां अब जैसे मथुरा में ये सब चीजें संभव है, ब्रज में ये सब चीजें संभव है, तो इसको छोड़ करके आदमी कहां जाएगा। इसलिए कहते हैं अंदर में निष्ठा रखो और बाहर में लोक व्यवहार करते चलो, जैसे रघुनाथ दास जी ने किया, घर में चले गए महाप्रभु जी की बात मान करके और लोक व्यवहार करने लगे, निष्ठा उनकी बढ़ने लग गई, हरिनाम ठीक से करने लगे, ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, घर में रहते हुए सभी काम करने लगे और अंत में निष्ठा उत्पन्न हुई, उससे और आगे बढ़ गए, घर छोड़ा, फिर घर कैसे छोड़ा, नित्यानंद प्रभु जी की करुणा हो गई, रघुनाथ दास ने उसके लिए कोई चेष्टा की, आग्रह तो था उनके अंदर में, ये प्रभु देखते हैं, आग्रह को प्रभु देखते हैं और उसके अनुसार में व्यवस्था करने वाले कौन है, वो प्रभु है व्यवस्था करने वाले, हमारे आग्रह को देख करके वे सारी व्यवस्था करते हैं, और नहीं हम यदि व्यवस्था करने लग गए और आग्रह तो कुछ है नहीं तो क्या होगा, वैसा प्रभु संजोग नहीं देंगे, भजन नहीं हो पाएगा और अंत में हम लोग नीचे गिर जाएंगे। इसलिए व्यवस्थापक वो सबके मन, जैसे कि हम लोग बृहद भगवतामृत में देखा और सर्वत्र देखा, प्रभु व्यवस्था करते हैं, वो यहां तक कि हृदय में चैत्य गुरु के रूप में वो प्रेरणा वैसे ही देंगे, प्रेरणा देने वाले भी वही हैं, वहां से देख करके दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु इत्यादि सब की व्यवस्था वो कर देते, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हरिदास ठाकुर का संग किसने दिया, हरिदास ठाकुर ये स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने आप मिल गया, प्रभु ने व्यवस्था कर दी, हरिदास ठाकुर इनके घर में जा रहे जाते थे, किस लिए जाते थे, इनको क्या जरूरत थी हरिदास ठाकुर को वहां जाने के लिए, बस उस बच्चे का प्रेम देख करके स्नेह देख करके भगवान के तरफ निरुचि देख करके, हरिदास जैसे परम विरक्त 300,000 नाम करने वाले और वो उनके पास नहीं जाए, उनके संग का संस्कार पड़ेगा, उनको तो संस्कार तो पड़ा हुआ ही है किंतु फिर भी दिखला रहे हैं साधक जीवन में जे कैसे भगवान ने व्यवस्था की और कैसे हरिदास ठाकुर का उनको संग प्राप्त किया, छोटे से बच्चे हैं तभी से उनको सिखला रहे हैं हरे कृष्ण कहना उनको सिखलाने लगे, और अद्वैताचार्य जी के शिष्य थे जदुनंदन आचार्य, वो इनके गुरु बन गए, गुरु के रूप में भेज दिया, सब व्यवस्था जहाँ है वहीं से स्थानीय स्थिति तनुवांग मनो भी प्राय स्वजित जीतो अपि हत्रहि कई लोग सब व्यवस्था करते, किंतु हृदय में लालसा उनकी उत्कंठा है कि कैसे प्रभु से मिले, भगवान से मिले, क्या साधन भजन करें, ये सब उनकी माथे चल गई। कुछ दिन के बाद में नित्यानंद प्रभु जी को महाप्रभु जी ने भेज दिया। वो पानीहाटी में आए और पानीहाटी आने पर उत्सव हुआ और उसमें स्वयं नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी को भी बुला लिया। सबने महाप्रभु जी का भी दर्शन किया, दोनों भाइयों को खाते हुए एक साथ में प्रसाद खाते हुए देखा, सब उल्लास से भर गए। और इसके बाद में नित्यानंद प्रभु जी ने उनके सिर पर अपना चरण रख दिया और बोले जैसे अब तुम्हारा जितना अशुभ है वो सब दूर हो जाए। और उन्हीं की कृपा हुई कि कुछ दिनों में सब कुछ उनका दूर हो गया बाधा विघ्न और महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे। महाप्रभु जी जब उनसे अब मिले तो अब वहां पर उनकी शिक्षा बदल गई। मने मने निज सिद्ध देह करी अभावन, उन्हीं के लिए है ना, मने मने निज सिद्ध देह करी अभावन रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण रचरण, राधा कृष्ण का चिंतन चरण करना और जो विशेष बातें हैं वो तुम स्वरूप दामोदर के निकट में सब कुछ जान करके वैसे ही करना। बस उनको सौंप दिया, प्रभु उतना शिक्षा नहीं देंगे जितना कि उनके साक्षात परिकर लोग देंगे, इसलिए तब से ये स्वरूप के
स्वरूप बन गए।
उन्होंने उनको क्या सिखलाया होगा, जैसा भजन करते थे स्वरूप दामोदर जी, कितने उच्च कोटि के थे साधक, साधक भी मान लिया तो ललिता जी के, और उनको क्या क्या शिक्षाएं दी होंगी वो खुद नोट करते थे और अपने श्लोकों में महाप्रभु जी के लीलाओं को वर्णन कर लेते थे नोट के रूप में, छोटे छोटे सूत्रों, जैसे महाप्रभु की आज की लीला हुई, क्या लीला हुई, महाप्रभु जी भाव तरंग में बहते 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 तीन दरवाजों को रात में न जाने कैसे पार कर गए और कालिंदी समझा समुद्र को, और कालिंदी में देखा जे तरंगे आ रहे, देखा जे राधा कृष्ण सब गोपियां वहां पर परस्पर जंग पीड़ा कर रही हैं, बस ऊपर से उसमें कूद करके चले गए बहुत दूर चक्र तीर्थ में, वहां से करीब करीब दो तीन माइल या चार माइल चले गए बैठे बैठे, और वहां जाकर के समुद्री में भी एकदम ऐसे हो गए हैं मानो जे मांस का कोई पिंड हो, जालिया ने जाल लगाया और उसमें अंदर में आ गए। उसने से आज बड़ी मछली फंसी, जब खींच करके ले आया तो देखा जी अरे ये क्या एक गोलाकार जैसा, खींच करके ले करके जाल दिया, ये तो भूत है, बस उसको ऊपर में भूत चढ़ गया और वो वहां से डर करके भागा और भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ कर करके वो भाग गया। और उधर से स्वरूप दामोदर जी राय रामानंद और जितने नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य इत्यादि जो भक्त वृंद हैं वो सब उनको ढूंढ रहे थे, रात भर ढूंढा। उन्होंने बताया गोविंद ने ये महाप्रभु जी रात में कहाँ चले गए, स्वरूप जी को बुलाया, राय रामानंद को बुलाया और सब भक्तों को बुलाया, देवटी जलाकर, देवटी मैंने प्रतीक जला करके इधर उधर खोजा, जगह जगह खोजते 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 कहीं नहीं मिले। सवेरे तब ये लोग जा रहे थे समुद्र को पकड़ करके, रास्ता जो कोई चीज समुद्र में गिरता है तो वो उधर ही बह करके चला जाता है चक्र पे, वहां पर जा रहे थे। इतने में वो खेलता हुआ भूत लग गया, भूत लग गया, पागलपन करता हुआ उन्होंने कहा क्या हुआ तुमको, तो मुझे भूत लग गया, कैसे भूत लग गया, तो वो जाल में फंस गया था, मैंने उसको छुआ मुझे भूत लग गया, जो तब तक कुछ है उसका, जब मैं तुम्हारा भी भूत ठीक कर देता स्वरूप दामोदर जी, बस मंत्र पढ़ करके एक थप्पड़ मारा, बस थप्पड़ मारते ही अब कैसा है, अब तो ठीक हूँ, ऐसे ही भूत छुड़ाते हैं लोग, किसी को भूत तुम लोगों को किसी को भूत ना कभी पकड़े, नहीं तो तुम्हारा पैसा भी ले लेंगे और सब कुछ हड़प लेंगे और कुछ करेंगे नहीं, वही थप्पड़ ओप्पड़ मार देंगे, कोई डंडा लेकर के नीम का पत्ता लेकर के खूब जोरों से मारेंगे और ऐसे कोई भूत भूत ऐसा कुछ नहीं, बस एक डर समा जाता है, बस ऐसा हो जाता है, बस एक थप्पड़ मारा होता है जो देखो तो अब भूत नहीं है ना, तो हाँ बहुत कुछ अब अच्छा होगा, अच्छा ठीक है तो दो तार थप्पड़ लगा देंगे तो वो भूत को लग जाएगा और वो भूत भाग जाएगा। कहाँ है वो बतलाओ तो, कहाँ वो तुमने जाल फेंका था, लेकर तो वो गया दूर से दिखलाया जी वो देखो,
निकट नहीं जाऊंगा,
निकट नहीं जाऊंगा ना तो फिर पकड़ लेगा। फिर महाप्रभु जी को उन्होंने देखा एक तक, ये क्या स्थिति थी, कुर्माकृति अपने अंगों को सबको अपने अंदर में ले लिया, ये महाभाव का लक्षण है। प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग में भी ये नहीं होगा, ये महाभाव की स्थिति में भी संभव नहीं, ये उसे और ऊपर जब जाएंगे रूढ़ अधिरूढ़ मदन मादन इत्यादि में जाकर के चित्र जल्प से भी ऊपर हो जाएगा। चित्र जल्प में भी ऐसा नहीं होता, चित्र जल्प क्या
वो
जो 10 प्रकार के भ्रमर गीत में वो जो बतलाए गए हैं, राधा जी जनों जैसे पागल हो गई हैं और वो बोल रही है भ्रमर को देखा कृष्ण का दूत और बोल रही है, और इसमें क्या हुआ, इसमें एकदम उसके सब अंग जितने थे वो सब पेट में चले गए और ऐसे गोलाकार वो हो गए। ऐसा कभी कृष्ण लीला में राधा जी का भी नहीं सुना गया, कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। महाप्रभु के जो सब संधियां छूट जाती थी, यहां से यहां सब
लंबे हो जाते थे
ना? और एक एक दो दो तीन तीन इतने यहां से छूट जाता था, केवल चमड़ा लगा रहा है, चमड़ा भी लंबा हो गया, ऐसे 5-7, 10-8 लंबे बन जाते थे, पैर की संधियां भी खुल जाती थी। और उसका उन्होंने एक श्लोक में सूत्र के रूप में यहां तक जितने भी लीलाएं हैं उन्होंने वर्णन करके अपने यादगार के लिए रख रखा। अब ये रघुनाथ दास को गोस्वामी को बतलाया है ये सब लीलाओं, उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को इन्होंने बतलाया, किन्होंने
दास गोस्वामी ने,
दास गोस्वामी ने, और सब इन्होंने कर्चा माने ही स्वरूप दामोदर जी का नाम, एक मुरारी गुप्त का कर्चा है और एक स्वरूप दामोदर का, मुरारी गुप्त हनुमान के अवतार और स्वरूप दामोदर वो ललिता जी, दोनों ने कर्चा बनाया तो किसका उत्तम होगा यह कहने की कोई जरूरत ही नहीं। हनुमान जो खर्चा बनाएंगे वो भी बड़े विद्वान आदमी हैं, हनुमान को कमर समझना, वो कौन है, शंकर जी ही हैं, समस्त विद्याओं के मूल हैं, शंकर जी के डमरू से अ आ क ख ये सब
स्वर निकलता है,
स्वर और व्यंजन जितने वर्ण और सब कुछ व्याकरण व्याकरण सब उससे निकलता है। हनुमान जी सब में एकदम पंडित है, किंतु उनको सख दास रस की उनकी भावना है, इसलिए उनको वही चीज अच्छी लगती है, इसलिए वहां तक दासरस तक की जो भावनाएं थी उसका सूत्र के रूप में जो वर्णन किया वो तो ठीक है, इसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और इन्होंने इन सब का वर्णन किया किंतु असल में अधिक उनको वर्णन किया ऐसी लीलाओं का जहां पर महाभाव और उससे ऊपर की स्थितियां होती हैं उसका वर्णन किया। तो ये स्वरूप दामोदर के यहां इन्होंने सीखा, उनको रहने का सुजुग देखो जो भगवान ने स्वयं उनके हाथ में दिया ना, तो यदि ऐसी कोई हम लोगों के लिए भी होती है ना, ये समझना जी ये भगवान की व्यवस्था से ही ये सब हुआ। जो भी सच्चे कोई साधक हो तो, और सच्चा साधक नहीं हुआ तो उसके लिए कोई बात ही नहीं, ये समझना चाहिए हम लोगों का कितना सौभाग्य है। एक तो मथुरापुरी में वृंदावन में हम लोग इतना सीखने और समझने का ये सब सुयोग है, सब साहित्य भरा पड़ा है, समझाने वाले भी हैं, कितना सौभाग्य। और इस पर भी नहीं हो यदि स्वरूप दामोदर की आराह करके यदि रघुनाथ दास गोस्वामी न सीखें तो ये किसका दोष होगा, रघुनाथ दास गोस्वामी, किंतु उन्होंने सब चीज को सीखा। इस तरह से मन ही मन में अपने मने मने निजे सिद्ध देह पर या भाव उनके लिए ये बतलाया, अपना सिद्ध देह भाव उनका यहाँ पर आगा नुगा पहले दिया था वो घर घर में रह करके करो, ये वैदिक भक्ति के संबंध में उन्होंने बतलाया। और पीछे वाला जो बतलाया वो राधानुगा के लिए बतलाया। दोनों चीजों को उन्होंने सामंजस्य करके अपने जीवन में आचरण किए। प्रभुपाद जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी हैं, उन्होंने दो काम किए। एक तो पंचरात्रिक विधान से अर्चन इत्यादि की शिक्षा दी, वैदिक भक्ति बात, और श्रीमद् भागवत के पथ से रागानुगार भावना पथ, ये दो मिश्रण करके श्री भक्तिदानंद ठाकुर जी ने और प्रभुपाद जी ने ये जगत में प्रचार किया। योग्य हो अथवा अयोग्य हो, प्रभुपाद जी ने सबको बुलाया एकत्र किया। पहले ऐसा नियम था कि केवल योग्य ही व्यक्ति संसार छोड़कर के आए उनको ही सुजोग मिलेगा, और अब क्या किया वो घर में सीखेंगे, किंतु अब घर में सीखने का तो रह नहीं गया कोई उपाय, वहां तो राजनीति सीखेंगे और अब दूसरा कर्म सीखेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक स्कूल कायम किया जिसमें जो थोड़ा सा भी जिनकी श्रद्धा है वो स्कूलों में रह करके सीखे और धीरे धीरे ऊपर में जाए। इसलिए जो योग्य नहीं थे उनको भी बुला करके उसमें लाया, नहीं तो हम लोग अभी आने के योग्य नहीं थे, सबके लिए दरवाजा खुल दिया। एक बात और है, आजकल कुछ समाज की ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई है, या लड़के सब भी वैसे ही हैं या और सब, कि वो समाज के विचारों से, घर के विचारों से बच्चे सहमत नहीं हो पाते और कुछ लग जाती है खत्म होती है, और वो सबको छोड़ करके चले आते हैं। अब वो डकैत मैंने चोर भरे क्या भरे कोई रास्ता नहीं मिलता। यदि प्रभुपाद उस समय में नहीं आते होते ना तो ये सब बच्चे जो प्रभुपाद के समय में आए थे वो कहाँ जाते, थोड़ी थोड़ी तो रुचि थी किंतु हो सकता है कि उनको पूर्ण योग्यता है। प्रभुपाद ने एक ऐसा स्कूल मायापुर में और सब जगहों में भारतवर्ष के सब बहुत जगहों में सेंटर बनाया और उसमें वो बच्चे सब आकर कुछ सीख रहे हैं, कुछ भजन के तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ब्रह्मचारी तक के लिए रखा है ब्रह्मचारी, इसके बाद में जिसकी इच्छा है तो वो घर में लौट जाए, जिसकी इच्छा है वो अपना भजन करे, कोई बंधन नहीं रखा ना? इस तरह से इस मिशन को होल दुनिया में, समस्त विश्व में इन्होंने फैलाया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु जी के जब तक थे तब तक तो वहां रहे, पुरी में रहे, और महाप्रभु के जाने के बाद में वो अत्यंत व्याकुल हो गए, स्थूल भोजन खाना एकदम छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद में महाप्रभु चले गए, स्वरूप दामोदर भी चले, थोड़े दिनों में थोड़े दिन में राय रामानंद जी चले गए, और थोड़े दिनों में ही गदाधर पंडित चले, पूरी का काम एक तरह से ठप हो गया, सब शून्य पूरी हो गए, सब भक्त लोग वहां से छोड़ छोड़ करके चले। जो चीज अत्यंत प्रिय होती है कभी कभी वही चीजें कुछ काटने लगती हैं पीछे, बड़ी दुखदायी होती हैं। कैसे, जब कृष्ण वृंदावन में है तो सखाओं को गोपियों को नंद भवन बहुत प्यारा लगता है, गोपियों को वहां पर गोपी घाट, जमुना का वह घाट बड़ा सुंदर लगता है जहां पर कि कृष्ण उनसे मिलते हैं, उनको गोवर्धन खूब प्यारा लगता है, क्यों गोचारण करने के लिए जाते हैं, वहां पर तरह तरह के कुंजे हैं, तरह तरह के बगीचे हैं, सुंदर सब चीजें हैं, वहीं उन पर मिलन होता है, पुष्प से मालाएं बनाते हैं, कृष्ण को देते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। और जब कृष्ण वहां से मथुरा चले आए तो नंद भवन का क्या हुआ, उजड़ गया ना, अब वही उनकी स्मृति अब कैसे हो जाती है, अब नंद भवन में जाने को इच्छा नहीं, उस समय में काटता है घर, प्रत्येक चीजें मानो कृष्ण का स्मरण दिला करके अत्यंत विप्रलम्ब रस में उसे डुबा देता है। नंद बाबा के घर में रसोई नहीं बनती, बर्तन औंधे हुए पड़े हैं, मकड़ों का जाल बुन गया है, किसके लिए बनाए रसोई, कौन बनाए रसोई। यशोदा मैया एक तरह से अंधी हो। नंद बाबा बाहर में जाते हैं कृष्ण को भूलने के लिए, किंतु ब्रज का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर उनको भूल सके, सब चीजें उनको स्मरण दिलाती है ना। ऐसे ही जब महाप्रभु जब चले गए तो वहां के भक्तों की ऐसी स्थिति हुई, कैसी स्थिति हुई, गंभीरा जाना उनको ऐसा मालूम होता था जब वो आग में जल रहे हैं, जलने के लिए जा रहे हैं, वहां आग जल रही है। रघुनाथ दास गोस्वामी का साहस ही नहीं होता था जो स्वर्ग दामोदर राय रमानंद जी महाप्रभु नहीं है गदाधर पंडित, अब जाए कहां, दिन रात तड़पने लगे। इसको कहते हैं भजन, इतना ना हो तो उसकी छाया तो रहे ना, आभास तो बना रहे। जब तक कि कृष्ण के लिए गुरु वैष्णव के लिए इतना बिछोह नहीं होगा, विरह अनुभूति नहीं होगी, तो भजन भजन ही नहीं होगा। अभी भी जैसे महाप्रभु कह रहे हैं कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर। महाप्रभु जी कह रहे हैं अच्छा इतना ना, उसका आभास, उसकी एक छाया तो हमारे अंदर में।